ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है ऑनलाइन सट्टेबाजी पर रोक और ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए संसद में पेश विधेयक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और राजनीतिक आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
खेल का नाम लेते ही हमारे आपके जहन में हमारे पसंदीदा खेल उभरने लगते हैं। आपको क्रिकेट पसंद हो सकता है, मुझे फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ये लिस्ट काफी लंबी है। और अब नए नए खेल भी इसमें जुड़ते जा रहे हैं, जैसे कि पिकल बॉल। जब हम छोटे थे तो एक कहावत थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। समय बदला, देश में सरकार बदली और साथ ही साथ खेलों के प्रति नजरिया भी। फिर देश के प्रधानमंत्री ने कहा, खेलोगे तो खेलोगे, और भारत खेलों की दिशा में खिलता हुआ नजर आया। चाहे ओलंपिक्स हो, राष्ट्रमंडल खेल या फिर एशियाई खेल, हर तरफ भारत ने पिछले एक दशक में खेलों में जो प्रगति की है, आजादी के बाद से वो सबसे सुनहरी कामयाबी है। लेकिन खेलों की दुनिया में एक कोना ऐसा भी है जो बेहद अंधेरा है। उस कोने में जाने वाले 50 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, और वो अंधेरा कमरा ऐसा है जहां एक बार आप गए तो फिर वापसी के दरवाजे लगभग बंद से हो जाते हैं। हमें लगता है कि गेंद हमारे बैट के बीचों बीच लगी है और ये बाउंड्री पार करेगी, चौका या छक्का तो निश्चित होगा, लेकिन वहां के नियम कुछ ऐसे हैं कि गेंद पर आप कैच आउट हो जाते हैं। फुटबॉल में आप बेहतर मूव बनाते हुए आगे जाते हैं और ऐसा लगता है गोल करके आप बढ़त हासिल कर लेंगे, लेकिन गोल तो होता है लेकिन वो सेल्फ गोल होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग के उस अंधेरे सच की, जिसको सभी जानते हैं कि ये एक ऐसा अंधेरा कमरा है जहां से किसी का भला नहीं हो सकता, लेकिन 50 करोड़ लोग उस अंधेरे कमरे में जाने के लिए हर दिन दरवाजा खटखटाते हैं। सरकार को इसकी चिंता थी क्योंकि ये इतना बड़ा बाजार है जहां इस देश के युवा बर्बादी के कगार पर पहुंच गए थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 पेश किया है। ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े इस बिल को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में पेश किया।
इस बिल के माध्यम से ई स्पोर्ट्स को लीगल रिकॉग्निशन मिलेगा। दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेम्स, जो कि साधारण तरीके पे बिना कोई मनी के खेला जाता है, जिसमें कोई शर्तें नहीं लगती, जिसमें कोई वेजर नहीं होता, जिसमें कोई स्टेक इस तरह से नहीं डाला जाता। वो एक साधारण तौर पे परिवार में बैठे हुए दोस्तों के साथ खेलने के गेम्स हैं, उनको भी सरकार प्रमोट करने का इस बिल में प्रोविजन रखे हुए हैं। एक तीसरा सेगमेंट है, यानी तीन में से दो सेगमेंट्स को सरकार प्रमोट कर रही है, इसलिए इस बिल का नाम भी प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग है। और जो तीसरा सेगमेंट है वो जो समाज के लिए बहुत एक बड़ी चिंता का कारण बन के उभरा है, ऑनलाइन मनी गेम्स। ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण लोगों में एडिक्शन हो रहा है, जगह जगह से इस तरह की खबरें आती हैं कि परिवार की बचत सारी की सारी गेमिंग के अंदर चली गई, कई जगह एक्सट्रीम केसेस है सुइसाइड के अभी, और एक तरीके से ये गेमिंग डिसऑर्डर बन गया, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी पब्लिक हेल्थ इश्यू मान के उसको एक ऑनलाइन गेमिंग डिसऑर्डर का नाम दिया है, जिसके कारण एक सीरियस समस्या समाज में सब जगह से फैल गई है, सब जगह से आ रहा है उसका फीडबैक। करीब करीब सांसद गण जितने भी मुझे मिलते हैं, जनप्रतिनिधि मिलते हैं, उन सबकी एक डिमांड रहती है कि ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया जाए, इस पे स्ट्रिक्ट कड़ी कार्रवाई की जाए।
क्या है इस बिल का उद्देश्य, कैसे सरकार इस पूरे बाजार को रेगुलेट करना चाहती है, इसके लिए बात की आकाशवाणी संवाददाता कमल प्रजापति ने इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन से।
नमस्कार श्रोताओं, आज हम कार्यक्रम में ऑनलाइन गेमिंग के सेक्टर से जुड़े हुए एक बड़े कदम पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग 2025 बिल आज संसद में पेश हुआ, और इस बिल के जो एक महत्वपूर्ण मकसद है कि ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, दूसरी तरफ जो हार्मफुल मनी गेम्स हैं उन पर रोक लगाना भी इसका एक बहुत बड़ा मकसद है। तो हमारे साथ इस बारे में विस्तार से बात करने के लिए कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिकी संचार और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन जी, बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में आपका।
नमस्कार।
सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप इस बिल के बारे में समझाएं कि ये क्या है और क्यों इस बिल को पेश करने की हमें जरूरत महसूस हुई है।
ये जो बिल है, ये प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 कहलाता है। इस बिल का मेजर मकसद दो में बांट सकते हैं। सबसे पहले ये जो बिल है इसके द्वारा हम ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे एरियाज हैं जिसको हम प्रोत्साहन देना चाहते हैं, जिसको बढ़ावा देना चाहते हैं। भारत में काफी सारे युवा क्रिएटर्स हैं जो कि अच्छा कंटेंट बनाते हैं और ऑनलाइन गेमिंग के सॉफ्टवेयर बनाने में और उसका कंटेंट बनाने में काफी तजुर्बा रखते हैं। उनको प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ महीने पहले उन सब से मुलाकात किया था और उनको प्रोत्साहित किया था कि आप ये ऐसे अच्छे वाले ऑनलाइन गेम्स बनाएं और ज्यादा से ज्यादा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि इस पूरे विश्व में भी इसको आप भेजें और इसका निर्यात भी करें। और ऐसे वाले ऑनलाइन गेम्स तो काफी सारे किस्म के होते हैं, रिक्रिएशनल होते हैं, जिनमें कि लोगों की जो रिक्रिएशन हो जाती है वो एजुकेशनल भी होते हैं, शिक्षा में काफी उनका उपयोग होता है और लोग इसके थ्रू काफी दुनिया के बारे में और वो जो सब्जेक्ट्स वगैरह जो पढ़ते हैं उन विषयों के बारे में भी काफी जानकारी हासिल कर सकते हैं। एक इंटरैक्टिव मेथोडोलॉजी होता है और कुछ ये स्पेशली एबल्ड लोग जो होते हैं, दिव्यांगजन जो होते हैं, उनके लिए भी ये अच्छे टूल्स होते हैं सिखाने के लिए। तो ऑनलाइन गेम्स के काफी अच्छाइयां हैं और उनको प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। लेकिन जब ये प्रोत्साहन और बढ़ावा दिया जाता है, साथ ही साथ ये ऑनलाइन गेमिंग का नाम इस वजह से खराब होता है क्योंकि इसमें एक सामुदायिक तौर पर एक बुराई भी है। हम जानते हैं, अक्सर हम अखबारों में और समाचार पत्रों में ये देखते हैं कि कहीं पे किसी का सुइसाइड हो गया या किसी का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया ऑनलाइन गेम्स खेलते खेलते। ऐसे खबर काफी छपते हैं और इस समाचार के वजह से भी काफी लोगों के मन में ये मनोवैज्ञानिक दबाव की तरह हो जाता है। बहुत लोग ऐसे वाले ऑनलाइन मनी गेम्स भी खेलते हैं। तो अगर हम इस सेक्टर को अच्छी तरह बढ़ाना चाहते हैं, प्रोत्साहन जो इस सेक्टर में जो अच्छा ही है उसको प्रोत्साहन देना चाहते हैं, तो इन दोनों इस सेक्टर में एक क्लियर जो डेफिनेशन लाना पड़ेगा, एक क्लियर डिस्टिंक्शन लाना पड़ेगा, जो अच्छे गेम्स हैं जिनको हम प्रोत्साहन देना चाहते हैं और जो बाकी खराब और जिनमें बुराई है उनको हम कैसे हम अप्रोच करेंगे। इन दोनों को हमको अलग अलग से देखना पड़ेगा
जी।
और इन्हें अलग अलग देखने के लिए ही ये एक्ट में ऐसा एक प्रावधान किया गया है कि अलग अलग इनको डिफाइन किया गया है। ई स्पोर्ट्स जिसे कहलाते हैं और ऑनलाइन सोशल गेम्स जिसमें कि ये एजुकेशनल गेम्स और रिक्रिएशनल गेम्स शामिल हैं, इनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसी तरह जो ऑनलाइन मनी गेम्स हैं इन पे रोक लगाया गया है और इसकी जरूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि बहुत सारे लोग, करीब करीब ये अनुमान लगाया गया है कि देश में करीब करीब 45 करोड़ लोग ये ऑनलाइन मनी गेम्स खेलते हैं और इनमें से बहुतों को काफी नुकसान हुआ है और मनोवैज्ञानिक दबाव भी उन पर पड़ा है
जी। और जैसा कि इस बिल में शामिल जो बातें हैं उसमें ये है कि जो वल्नरेबल युवा है या जो एक ऑनलाइन गेम सेंट्रिक यूथ है वो हार्मफुल मनी गेम्स के जो चंगुल में पड़ता था उसको दूर करने में उससे मदद मिलेगी क्योंकि उन पर रोक होगी। तो क्या चैलेंजेस आ रहे थे हार्मफुल मनी गेम्स से और कैसे आपको लगता है इस बिल के बाद उन पर नियंत्रण आने से कुछ मदद मिलेगी और वो रेगुलेशन जब लागू होंगे तो युवाओं के लिए ये कुछ फायदे की बात होगी?
जी जरूर। इसमें जैसे मैंने बताया कि फायदा इस वजह से हो सकता है क्योंकि हम भारत को विश्व के स्तर पर एक ऑनलाइन गेमिंग मतलब गेम डेवलपमेंट एंड गेम क्रिएशन में एक मुख्य स्थान हम भारत को देना चाहते हैं और ऐसे डेवलपमेंट के लिए भारत एक विश्व का कैपिटल बने, यही माननीय प्रधानमंत्री का जो दृष्टि में यही एक बहुत अहम मकसद है। उसी तरह अगर आप देखें तो जहां पे ये हार्मफुल इफेक्ट्स हैं गेम के, इसमें से बहुत सारे परिवार को काफी नुकसान पहुंचती है और उसे रोकना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और खासकर यूथ जो हैं और जो गरीब लोग हैं वो ऐसे गेम्स में काफी वो फंस जाते हैं और इनको एडिक्शन सा हो जाता है, नशा सा हो जाता है और फिर से खेलने लगते हैं और उससे निकल कर आना वो बहुत मुश्किल पाते हैं। इस वजह से इस पे हमें नियंत्रण पाने के लिए ये जरूरी कदम माना गया है
जी। ये बिल पूरे देश भर में एक यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क स्टेटस रखेगा, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं कि ई स्पोर्ट्स और हार्मफुल मनी गेम्स को लेकर ये यूनिफॉर्म लीगल स्टेटस क्यों जरूरी था?
देखिए, काफी स्टेट्स ने, मतलब बहुत सारे राज्यों ने ऑनलाइन मनी गेम्स पर रोक लगाने की प्रयत्न किया था और उन्होंने अपने अपने स्टेट्स में कानून बनाने की कोशिश की थी। और ये कानूने जो हैं बहुत सारे स्टेट्स में लीगल चैलेंज में आ गई, क्योंकि काफी सारे ऑनलाइन गेम्स में ये बताया गया है कि जहां तक राज्य का संबंध है, उनके पावर्स में संविधान के अंतर्गत 7th शेड्यूल में, 7वां जो शेड्यूल है उसके अंतर्गत List 2, जो स्टेट्स का लिस्ट होता है, उसमें ये लिखा गया है कि वो जो प्रोविजन है वो बेटिंग एंड गैम्बलिंग पे राज्यों का अधिकार है, उस पर वो अपना कानून बना सकते हैं। लेकिन इन गेम्स का कहना था कि हम गेम ऑफ चांस नहीं है, मतलब हम बेटिंग और गैम्बलिंग के अंतर्गत, जुआ के अंतर्गत नहीं आते हैं, हमें खेलने के लिए कुछ तजुर्बा चाहिए, कुछ स्किल चाहिए। अतः वो बहुत स्टेट्स में ऐसे जो लॉज बनाए गए वो सक्सीड नहीं हो पाए। वैसे देखें तो बहुत सारे ये गेम्स जो हैं एक मिक्सचर और स्किल और चांस दोनों रहती है, मतलब उसमें कुछ तजुर्बा भी चाहिए और कुछ गुड लक भी चाहिए, दोनों चीज उसमें मिली हुई होती है। और इस पर अगर हमें एक कानून लाना पड़ेगा वो भारत सरकार ही ला पाएगी, ये एक निर्णय लिया गया। दूसरा निर्णय ये, दूसरा एक इसका दृष्टिकोण ये था कि जब ऑनलाइन कोई सर्विस होता है, वो ऑनलाइन सर्विस सिर्फ एक स्टेट के अंदर, एक राज्य के अंदर नहीं रहता है, वो अलग अलग राज्यों में जाता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है और देश के बाहर भी जा सकता है, देश के बाहर से अंदर भी आ सकता है, क्रॉस बॉर्डर भी हो सकता है। ऐसे हम देखने जाएं तो उसके कंट्रोल के पावर्स जो हैं भारत सरकार के पास हैं, ना ही स्टेट गवर्नमेंट के पास। उस हिसाब से हम देखें तो भारत सरकार को ही इस पर कानून लाने का अधिकार बनता है और उस हिसाब से ये कानून भारत सरकार ने लाया है।
जी, इस बिल के जरिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी इंश्योर करने की भी बात कही गई है। तो ऑनलाइन गेमिंग को लेकर जो ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी है, इससे कैसे हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाएगा, इस बारे में भी थोड़ा बताएं।
इसमें प्रॉब्लम ये ऑनलाइन गेम्स के अंतर्गत कुछ गेम्स के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग भी चलता है, मतलब एक देश से दूसरे देश को इलीगली पैसा भेजा जाना, ये हमने काफी पाया है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज और वित्त मंत्रालय के नीचे जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, उन सब ने भी हमको रिपोर्ट्स दिए हैं कि इन ऑनलाइन गेम्स के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग भी चल रहा है और इलीगल ट्रांजेक्शंस भी चल रहे हैं। इन सब को रोकना होगा या इन सब पर नियंत्रण पाना होगा, इसके लिए भी ये इन ऑनलाइन गेम्स पर रोक लगाना जरूरी पाया गया।
तो आपने जैसा कि बताया, ई स्पोर्ट्स के जरिए कोशिश है रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स और जो नए ई स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम हमारे यहाँ बने, इस बिल के जरिए इस पर भी फोकस किया जाएगा। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में युवा इस बिल के जरिए भारत में स्पोर्ट्स को एक नए डायरेक्शन में देखेगा और खासतौर पर जो नया एक इनोवेशन है, स्टार्टअप्स हैं, वो आगे आने में मदद करेंगे इस बिल के जरिए?
जी, हमारी पूरी उम्मीद है कि ऐसा हम देखेंगे। और ऑलरेडी भारत सरकार ऑनलाइन गेमिंग, खासकर रिक्रिएशनल और सोशल गेम्स, और इसके अलावा ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, और AVGC सेक्टर जो कहलाता है, ऑडियो विजुअल गेमिंग एंड कॉमिक्स का जो सेक्टर कहलाता है, उसके लिए बढ़ावा देने के लिए काफी प्रयत्न ले रहा है। मुंबई के पास एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी करके एक नया संस्थान बनाया जा रहा है जो इसको प्रोत्साहन देगा। इसी तरह STPI जो हमारे मंत्रालय के नीचे एक संस्था है, वो हैदराबाद में और शिलोंग नॉर्थ ईस्ट में, दोनों जगह AVGC सेक्टर के लिए और गेमिंग के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस चलाता है, जहाँ पे काफी सारे स्टार्टअप्स और इनोवेशन के लिए प्रोत्साहन मिलता है।
जी सर, एक सवाल ये मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे जो मॉनेटरी बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं बहुत सारे जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, तो उस पर भी कुछ रोक या प्रतिबंध की बात है इस बिल में?
जी, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स का पूरी तरह से रोक लगाया गया है। जो ऐसे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स बनाते हैं, जो उनमें भाग लेते हैं, जो उनको कैरी करते हैं, उन सब पे इसके लिए एक्शन लिया जा सकता है, इस पे रोक लगाया गया है।
एक्शन या सजा का कोई प्रावधान?
सजा है 2 साल तक इम्प्रिजनमेंट और 50 लाख तक फाइन लगाने की सजा भी दी गई है, उसका प्रावधान किया गया है।
तो हम उम्मीद करते हैं कि ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने को लेकर और साथ में जो खासतौर पर हार्मफुल मनी गेम्स हैं उसको रोक लगाने में ये बिल जब एक्ट के रूप में हमारे सामने आएगा तो एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे देश में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में ये बिल साबित होगा। बहुत धन्यवाद सर, कार्यक्रम में आप जुड़े और इस विधेयक पर आपने विस्तार से प्रकाश डाला और हमारे श्रोताओं को इस पूरे बिल से अवगत करवाया।
धन्यवाद।
अभी हमने इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव साहब को सुना और अब क्या इसका बाजार पर प्रभाव पड़ रहा है इसके लिए बात करते हैं आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली जी से। शरद जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
नमस्कार आनंद, आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन।
तो जैसा कि आज हम चर्चा कर रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 पर, कोहली साहब आपसे ये समझना चाहेंगे कि कितना बड़ा इसका बाजार है, क्योंकि जब भी हम किसी विषय की बात करते हैं और उस पे अगर सरकार का इंटरफेरेंस आता है तो ये बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं बहुत व्यापक रूप से समाज को ये प्रभावित कर रहा है। दो पहलू हैं, ई स्पोर्ट्स को सरकार ने बढ़ावा देने की तरफ इस विधेयक में कदम उठाए हैं और दूसरी तरफ जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं सट्टेबाजी या ऑनलाइन गेमिंग, उस पर कहीं ना कहीं कड़े प्रतिबंध का प्रावधान है। दोनों का थोड़ा मार्केट कैप हमारे श्रोताओं को अगर आप बता पाएं तो।
ऑनलाइन गेमिंग का जो पूरा बाजार है ऐसा माना जाता है कि करीब 2,00,000 करोड़ का है पूरा जो सेक्टर है, और जो इसकी दलील दे रहे थे जो लोग ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज है कि हमारा 31,000 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू है, सरकार को भी 20,000 करोड़ के आसपास हम टैक्सेस देते हैं, 20% CAGR जिसको हम कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं, उस रफ्तार से ये बढ़ रही थी और 2028 तक इसने डबल भी हो जाना था, ये भी दलील दी जा रही थी। और सबसे बड़ी दलील तो ये दी जा रही थी कि 50 करोड़ लोग 2024 में इस पूरे सेक्टर से जुड़ गए, और मुझे लगता है कि 2022 की मैं बात करूं जब ज्यादा इसमें जोर पकड़ा था तब ये 25,000 करोड़ का था, और इतनी तेज रफ्तार से ये बढ़ा है कि जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज है उनका ये भी कहना है कि 2,00,000 आदमी जो है वो इसमें नौकरी करते हैं इस समय पूरी गेमिंग इंडस्ट्री में, जो इसके बैक एंड है, जो इसको IT सिस्टम चलाते हैं, जो सारा डिजिटल इसकी पूरा का पूरा इकोसिस्टम है उसको चलाते हैं। पर कई दफा ऐसा होता है कि जो सामाजिक हमारी कंपल्शंस हैं वो हमारी जो रेवेन्यू कंपल्शंस है या जो नंबर्स हैं उसको एक्सीड कर जाती हैं, क्योंकि समाज इससे बिगड़ रहा था। मेरे पास ऐसे आनंद अनेकों उदाहरण हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे और मैं कहूंगा कि युवा जो कि इससे प्रभावित थे। एक किस्सा मुझे पता लगा कि 35,000 रुपए का लॉस हुआ, उसने सुसाइड किया, मध्य प्रदेश का केस था। एक श्वेता थी मुंबई में, उन्होंने 9,00,000 अपना कर्जे में आ गई, उसमें वो भी सुसाइड का केस था। मेरे पास ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल्स हैं। 65% हमारी आबादी इस देश की 35 साल से कम उम्र की है। अगर आप ऑनलाइन गेमिंग के जो यूज करने वाले हैं, जो इसकी मार्केट है या जो ग्राहक कह दें हम उसको, ज्यादातर वो 35 साल से नीचे के हैं। और अगर आप एक ऑनलाइन गेमिंग सिस्टम चला रहे हैं जिसमें आप रिटर्न के भाई आपका पैसा डबल हो जाएगा, आप 1,000 लगाइए 2,000 ले जाइए, तो ये तो एक प्रकार से जुआ हो गया, ये सट्टेबाजी हो गई, और इस सट्टेबाजी को कभी भी खुले तौर पर परमिशन इस देश में नहीं दी जा सकती। एक सोशल अनरेस्ट पैदा करेगा, ये युवाओं को भटका देगा, युवाओं को सुसाइड करने के लिए मजबूर करेगा, युवाओं को डिप्रेशन में ले जाएगा। पर सरकार ने जो बिल पे जोर दिया है उसमें ये लिखा है कि अगर रिटर्न बेस्ड आप खर्च कर रहे हैं, यानी कि आप पैसा लगा रहे हैं कुछ पैसा कमाने के लिए सट्टेबाजी में, उसकी हम कतई परमिशन नहीं दे सकते। 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना, कोई इसको अगर अब भी करता है कंपनी को 3 साल की कैद का प्रावधान है, आप दोबारा करते पकड़े गए तो 5 साल की कैद हो सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि हम समाज को बिगाड़ने की तरफ कभी भी सरकार ऐसा कदम नहीं उठा सकती जिससे समाज बिगड़ जाए। मुझे लगता है कि सरकार को कोई भी हिचकिचाहट नहीं है इन सारे नंबर्स का कुर्बानी देने में कि अगर ये इंडस्ट्री खत्म हो जाती, जैसे दलील दी जा रही है गेमिंग के जो प्लेयर्स हैं कि ये खत्म हो जाएगी, तो खत्म हो जाती है तो हो जाए, क्योंकि हम युवाओं को भटकने की कॉस्ट पे इन नंबर्स को हम सर्वाइव नहीं करने दे सकते। ये आनंद इसमें समझने वाली बात है।
आपने ऑनलाइन गेमिंग और इसके पहलुओं का मार्केट कैप बताया, बहुत संक्षेप में आपसे ई स्पोर्ट्स का भी बाजार समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सरकार उस दिशा में प्रोत्साहन देने की बात कर रही है इस बिल में। ई स्पोर्ट्स का कितना बड़ा मार्केट है इंडिया में?
देखिए, ई स्पोर्ट्स भारत में बहुत ही अच्छे तरीके से उभर रहा है और सरकार उसको बढ़ावा भी दे रही है। अगर आप साइज की बात करें कि हमारा ई स्पोर्ट्स में कितना हमारा मार्केट साइज है, तो करीब 67-68 बिलियन डॉलर का 2024 में मिलियन डॉलर्स का हमारा साइज था। 1 मिलियन डॉलर करीब का, 8,70,00,000 रुपए का अगर डॉलर की प्राइस ले, तो हमारा 68 मिलियन डॉलर का ई स्पोर्ट्स का साइज है, और उसको हमें बढ़ाने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं है। अगर वो कल को 100 मिलियन 200 मिलियन भी हो जाता है, मुझे लगता है वो स्किल बेस्ड है, उसमें कहीं सट्टेबाजी नहीं है, आप उसमें कोई रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। स्पोर्ट्स के तो टूर्नामेंट्स होने लगे, अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें कि स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट देखने को मिल रहे हैं, तो वहां पर अगर आप एक फील्ड बेस्ड गेम खेलते हैं या आप ई स्पोर्ट खेलते हैं, उसके लिए हमेशा सरकार का साथ मिलेगा।
पहले ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार ने 28% जीएसटी लगाया और विनिंग अमाउंट पर 30% टैक्स, जो कि जीएसटी और टैक्स आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स रहे हैं, क्या इससे बात नहीं बनी?
दो अलग अलग मुद्दे थे। एक था कि क्या हम इस एक्टिविटी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्या हम इसको जारी रखना चाहते हैं कि नहीं, एक तो ये मुद्दा था। एक जीएसटी और टैक्स का मुद्दा था कि जब तक ये चल रही थी, अब ये कानून तो आ जा रहा है, जब तक कोई भी एक्टिविटी उसमें ऑनलाइन स्तर पर या वैसे चल रही है तो लाजमी बात है कि वो टैक्स के दायरे में आएगी। आप अगर उससे कमाई कर रहे हैं तो 28% टैक्स लगा। आप तो बल्कि अगर ये बिल ना पास होता और ये अवैध ना घोषित होती तो एक मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूं, मैं एक काल्पनिक परिस्थिति ले रहा हूं जिसमें कि ये शायद 40% कैटेगरी में चली जाती है। आप प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले के प्राचीर से भाषण दिया, जो उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की बात करी, तो उसमें जो 28% में जो आइटम आते हैं, ऐसा माना जा रहा है कि 28% स्लैब को शायद खत्म कर दिया जाए और उसके आइटम 40 में डाल दिया जाए। 40 में वो चीजें आएंगी जिसको हम सिन गुड्स कहते हैं। अब यहाँ पर सिन गुड्स का मतलब, सिन का मतलब पाप होता है, पर सरकार जिस एक्टिविटी को डिस्करेज करना चाहती है तो गेमिंग कंपनीज को यह भी समझना चाहिए कि अगर वो चलते भी रहते तो इसको 40% कैटेगरी में चले जाना था। अगर 40% में जाती तो वो तो वैसे भी वायबल नहीं रहती। जहां तक इनकम टैक्स की बात है, 30% देखिए हाईएस्ट रेट होता है किसी भी चीज को, जब आप सीधा टैक्स करना चाहते हैं बिना खर्चे अलाउ किए तो सीधा सीधा उस पर, तो जब तक के लिए ये संसद के अंदर कानून
बिल्कुल,
के रूप में नहीं
बिल्कुल
आया
सही
था, तब तक के लिए इस पे ये टैक्स की प्रतिक्रिया जारी करी गई थी।
कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि इस बिल में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और इससे कैसे समाज में बदलाव आएगा। बता रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता दीपेंद्र।
इसके तहत एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी की नियुक्ति का प्रावधान है। इसका उद्देश्य इन खेलों से पड़ने वाले प्रभावों से लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है। ऑनलाइन गेमिंग विधेयक के तहत निगरानी के लिए एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण बनाया जाएगा और बिना रजिस्ट्रेशन वाले अवैध गेमिंग प्लेटफॉर्म पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बिल में अधिकारियों को संपत्ति जब्त करने का भी अधिकार होगा। यह विधेयक देश की सुरक्षा और संप्रभुता और वित्तीय प्रणाली की अखंडता को सुनिश्चित करेगा। इस विधेयक के तहत पैसा लेकर ऑनलाइन खेलों की पेशकश करने वालों और इसका संचालन करने वालों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। ऑनलाइन गेम से जुड़े कानून के उल्लंघन पर 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। अगर कोई इस कानून का दोबारा उल्लंघन करता है तो 3 से 5 साल तक की कैद और 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यह विधेयक देश के युवाओं को ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग एप्स जैसे कि पोकर और रमी जैसे प्रलोभन वाले गेम से बचाएगा जो उन्हें पैसों का लालच देकर फंसाने का काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय एक समर्पित ढांचा स्थापित करेगा। साथ ही सामाजिक ऑनलाइन गेम्स को प्रोत्साहन देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय शैक्षणिक सांस्कृतिक और कौशल विकास से संबंधित गेम्स को अपना समर्थन प्रदान करेगा।
कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे बात की थी उस अंधेरे कमरे की जहां पर 50 करोड़ से ज्यादा लोग जाते हैं लेकिन बाहर नहीं आ पाते। आइए आपको एक ऐसी ही रिपोर्ट सुनवाते हैं।
ऑनलाइन गेमिंग के बढ़ते खतरे ने कई परिवारों को बर्बाद कर दिया है। हाल ही में एक दिल दहला देने वाली घटना में एक ट्रैवल एजेंट ने अपनी पत्नी और 11 साल की बेटी के साथ नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने ऑनलाइन रमी में 15 लाख रुपए से अधिक खो दिए थे और कर्ज में डूब गए थे। यह सिर्फ एक घटना नहीं, कर्नाटक में 2023 से अब तक ऑनलाइन जुआ से जुड़ी 32 आत्महत्याएं हो चुकी हैं। जनवरी 2025 में बेंगलुरु में 2 लोगों, एक प्रयोगशाला तकनीशियन और एक ऑटो चालक ने रमी एप्स पर 10 लाख रुपए से अधिक होने के बाद आत्महत्या कर ली। इस साल 15 जुलाई को उत्तर कश्मीर के बांदीपुरा जिले में एक व्यक्ति ने ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर 1.5 करोड़ रुपए से अधिक खो दिए, जिसका उसके परिवार को सामना करना पड़ा। वो बेघर हो गए और 44 लाख रुपए के कर्ज तले दब गए। पीड़ित ने एक भावनात्मक वीडियो अपील में लोगों को ऑनलाइन जुए के खतरों से आगाह किया है और बताया है कि कैसे ऑनलाइन गेम्स उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी।
ऑनलाइन गेमिंग से स्कूल के विद्यार्थियों पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। थोड़ा उनका मनोविज्ञान समझने की कोशिश करते हैं और इसलिए आज के इस कार्यक्रम में हमने जोड़ा है अपने साथ शिक्षाविद ज्योति गुप्ता को। ज्योति मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
जब आप बच्चों से मुखातिब होती हैं, जब आप उनसे रूबरू होती हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी एक वर्ग ऐसा है जो वो ऑनलाइन गेमिंग की तरफ या तो रुचि रखते हैं या फिर कहीं ना कहीं वो ऑनलाइन गेमिंग के एक प्लेयर हैं। कितना नकारात्मक असर आप उनकी पढ़ाई में देखती हैं और व्यक्तित्व के विकास में नजर आता है आपको?
हमें इसका बहुत ज्यादा नकारात्मक असर दिखाई देता है और हम जब भी पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ बात करते हैं उनको ये बताते हैं कि ऑनलाइन और कोलैबोरेटिव गेमिंग जो है वो उनके लिए अच्छी नहीं है। एक तो वो उनका स्क्रीन टाइम बढ़ाती है, बच्चों को ये पता ही नहीं चलता कि वो गेम में कितने एंगेज हो जाते हैं और कितना आगे बढ़ जाते हैं, और वो स्ट्रेंजर्स के साथ जिन लोगों को बिल्कुल जानते नहीं है उनके साथ भी कोलैबोरेट करके वो खेलने लगते हैं। हमने बहुत सारे किस्से ऐसे देखे हैं जहां पर बच्चे अननोन लोगों के बहकावे में आके कुछ ना कुछ उनको दे भी देते हैं या उनसे मिलने भी चले जाते हैं या अपना घर छोड़ के भी चले जाते हैं, क्योंकि बाद में सब कुछ सही हो जाता है तो शायद मीडिया के संज्ञान में ये बातें नहीं आती, पर ये बहुत सीरियस इशू है कि बच्चे कैसे ऑनलाइन गेम खेलते हैं, अपने पेरेंट्स के पैसे खर्च करने लगते हैं, चुपचाप वो अपने पेरेंट्स के कार्ड के डिटेल्स डाल देते हैं उसके अंदर, और बच्चों को ये भी नहीं समझ में आता कि गेम्स में इतना AI होता है कि वो उनके पूरे फोन्स को भी क्लोन कर लेते हैं। इसके अलावा कोई भी गेम बच्चे खेलते हैं तो वहां पे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं और हर तरह का एडवर्टाइजमेंट आता है, बच्चा कोई भी उम्र का हो अगर वो एक दफा ऑनलाइन जाके अपनी पहचान बना के और वहां पे खेलना शुरू कर देता है तो इतने एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं जिसमें कि एडल्ट एडवर्टाइजमेंट्स भी होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि ऑनलाइन गेम्स के तहत बच्चों को बहुत ही परेशानी में भी डाल देते हैं और उनकी एनर्जी वेस्ट भी करते हैं।
समस्या काफी गंभीर है और इसी समस्या के समाधान के लिए सरकार ने लोकसभा में ये विधेयक पेश किया है। जब हम समाधान की बात करते हैं तो बच्चे अपने जीवन का बहुत बड़ा समय स्कूल में बिताते हैं, इस दिशा में ऑनलाइन गेमिंग में बच्चे न फंसें या जो बच्चे उस दलदल में चले गए हैं और जो अपना जीवन कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहे हैं उनको वहां से निकालने के लिए या फिर उनको मेंटल रूप से टफ बनाने के लिए कि वो गलत रास्ता है उधर नहीं जाने के लिए, क्या विद्यालय में किसी तरह के खास सेगमेंट की शुरुआत की गई है या फिर बीच बीच में आप कोई मेंटल ट्रेनर को बुलाकर उनको बूस्टअप करती हैं, कुछ इस तरह की भी योजना चल रही है विद्यालयों में?
हमारा मेंटल हेल्थ का पूरा कैलेंडर बना हुआ है और न सिर्फ काउंसलर्स, टीचर्स और मैं बच्चों से और पेरेंट्स से बात करते हैं बल्कि हम साइबर क्राइम से भी लोगों को बुलाते हैं, मनोवैज्ञानिक जो डॉक्टर्स होते हैं उनको भी बाहर से बुलाते हैं और समय समय पे बच्चों को इससे अवगत भी कराया जाता है और बारी बारी उनको कहा जाता है कि अगर आपको खेलना है तो आप बाहर जाके खेलिए, आप फुटबॉल खेलिए, आप क्रिकेट खेलिए, आप और कुछ नहीं तो दौड़ लगाइए। स्कूल में भी एक घंटा हम सुबह खेलने के लिए बच्चों को देते हैं। वो कहीं ना कहीं अब जैसे लॉ आ जाएगा तो पेरेंट्स भी कह सकते हैं ये तुम्हें अलाउड ही नहीं है,
जी बिल्कुल,
वो शायद उसकी मदद करेगा। स्कूल से भी हम समझाते हैं, वो भी मदद करता है पेरेंट्स की, और ये चीज देखने में बहुत आती है कि आजकल बच्चे अपने पेरेंट्स का कहना नहीं मानते, वो उनकी बात ही नहीं मानते।
जी कहीं ना कहीं इस बिल के आ जाने से अभिभावकों के पास भी उन्हें समझाने के लिए एक उपयुक्त हथियार की तरह होगा और जैसा आप बता रही हैं कि स्कूल में भी उन्हें इस बारे में अवगत कराया जाएगा। कार्यक्रम में अब समय नहीं है कि इस पर और विस्तार से चर्चा की जा सके। शरद कोहली आपका और ज्योति गुप्ता आपका आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार।
थैंक यू,
धन्यवाद, थैंक यू।
उम्मीद करते हैं कि सरकार जिस मंशा से इस बिल को लेकर आ रही है वो अपने इरादे में कामयाब होगी और ऑनलाइन गेमिंग के जरिए जो करोड़ों जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं उन जिंदगियों को बर्बाद होने से रोका जा सकेगा और एक बार फिर से समाज में सकारात्मक संदेश भेजा जाएगा।
अभी आप सुन रहे थे ऑनलाइन सट्टेबाजी पर रोक और ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए संसद में पेश विधेयक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और राजनीतिक आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।